मैं कैसी बच्ची को जानती हूँ, यहाँ की बात नहीं बल्कि पाकिस्तान की बात है, कोई भी है इससे मुझे और आपको कोई ताल्लुक नहीं है। बच्ची को जुनून की हद तक शौक था, एक बड़ी ब्रांडेड यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में भी, मुझे उसमें दाखिल होना है। घर का माहौल अच्छा नपातुला, जैसे नमाजें भी पढ़ ली और वो भी था। खैर जिद करके बच्ची ने दाखिला ले लिया और माँ बाप देते, मुझे याद इस वक्त नहीं, मेरा जो मेरे लाशौर में ना 3 लाख रुपए पाकिस्तान के, वहां सिर्फ दाखिला फीस या उनकी कोई फीस थी, जो भी कर करा के दिया। मेरा ख्याल है कि 6 माह नहीं वो बची गई, तो उनको जो चीजें उसमें दिख रही हैं, वो बातें, जो फीलिंग्स थी, उन्होंने कहा कि नो मोर। वो तो अल्लाह का हुक्म ही ऐसा, तो उसका नसीब अच्छा था कि उसको सिलसिला कट डाउन करके उसकी शादी हो गई। अल्लाह ने उसकी सुन ली, मैं तो कहती हूँ। और आज शादी के बाद जब वो एक बड़े अच्छे बादशाह और इंसान के साथ जी रही है, वो खुद कहती है कि वो 1 साल जो मैंने उस यूनिवर्सिटी के माहौल में गुजारा, उसने मुझे कहाँ ले जाना था। आप क्या सोचते हैं, हम इल्हाद के साथ अपने बच्चों को इस्लाम तो नहीं दे सकते कि जहां आप हर चीज को के इट्स ओके और इट्स ओके। अल्लाह किन की बात सुना रहे हैं, नबियों की, चले छोड़े किस्से, बुजुर्गों के किस्से, मेरे आपके बड़ों के किस्से, हु केयर्स, ये नबियों के किस्से हैं। और इस जमीन पे नबी कौन होते हैं, ये रोशनी के मीनार होते हैं, ये वो सर्च लाइट्स हैं जिनकी रोशनी में नस्लें चलती हैं। और अल्लाह कहते हैं अनमत अलैहिम, पहले दिन से सबक है सिरात अल्लज़ीना अनमत अलैहिम। अब बताएं कि जब अल्लाह कह रहे कामयाब ये लोग हैं, इनके हाथों में टार्च है, तो क्या मैं और आप इनसे ऑपोजिट तरीके से औलादों को पाल के कामयाबियों की उम्मीद रखते हैं, और रखेंगे तो सरासर बेकार। आज देखिए खुशी हमें भी नहीं मिली, फिर अगर अगर हमें औलाद की दीन नहीं मिला ना, तो औलाद हमारे लिए भी कोई खुशी का जरिया नहीं बनी, वो हमें भी घूरती है। जितना मर्जी घी के लुक में उनको आप खिलाएं, हाथ से लुक में तोड़े, कभी बच्चे अपने माँ बाप की कदर नहीं कर सकते जब तक उनको अल्लाह की कदर नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह तो उससे ज्यादा खिलाता है। आप तो माँ हैं, वो तो 70 माँ से ज्यादा है, वो तो रब्बुल आलमीन है। उसका नहीं सिखाएंगे ना, उनका नहीं बनाएंगे, तो आपके नहीं बनेंगे, मेरे नहीं बनेंगे, तो मेरा नहीं बनता अपना तो बन। जो अल्लाह का नहीं होता वो अपना भी नहीं रहता। आप सूरह हशर में पढ़ेंगे, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह, मत हो जाओ उन लोगों जैसे जो अल्लाह को भूल गए। फंसाहुम अनफुसहुम, अल्लाह ने उनको उनकी जान ही भुला दी, वो फिर अल्लाह को नहीं भूलते, खुद को भी भूल जाते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत। और पीछे कई बार बात हो गई कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते थे हज़रत याकूब, और हज़रत इसहाक के बेटे थे। नबियों की नस्ल है, जिसको आप कहें कि जद्दी पुश्ती खानदानी नबी थे, नबी ज़ादे थे। आज कुछ लोग सिर्फ खुद को सैयद ज़्यादा कहकर जन्नती कर लेते हैं कि हम जन्नती हैं, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि नहीं, ये उनकी बातें थी। नबियों को अपने आखिरी लम्हों में उस बात की फिक्र लगी हुई है जिसकी हमें अपनी जिंदगी में शुरू में भी नहीं लगती। और बच्चे भी कैसे खुशकिस्मत थे कि जिनको माँ बाप इस तरह की बातें कह रहे थे। आजकल के तो हालात में अल्लाह माफ करे, बच्चों का मामला ही थोड़ा सा बदल गया। मैं कहती हूँ कि अगर आज हम लोग कहते हैं ना कि औलाद अच्छी नहीं मिली, अच्छे बच्चे नहीं है, तो मेरा दिल दुखता है, लेकिन मैं अक्सर सोचती हूँ कि आजकल के बच्चे भी कुछ ज्यादा खुशकिस्मत नहीं है, उनको माँ बाप कौन से अच्छे मिले हैं। और बड़ा गम ही है कि उनको अच्छे माँ बाप नहीं मिले, जिनको इस बात की फिक्र कम है कि बच्चे दुनिया में क्या कर रहे हैं, आखिरत में क्या उनके साथ होगा, उनको इस चीज़ की फिक्र है कि उनकी आखिरत क्या होगी। आप देखिए कि अक्सर एक जुमला हम लोग बोलते हैं ना, हाय हम मर गए तो हमारे बच्चों का क्या होगा। आप लिखे जरा इससे मुख्तलिफ जुमला, ये सोचने की बजाय कि मैं मर गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा, ये बताइए कि अगर मेरे बच्चे मर जाएंगे तो उनके साथ क्या होगा। हमें अपने बच्चों के मरने के बाद की फिक्र करनी है, अपने मरने के बाद से ज्यादा, फिर बात बनेगी इंशाल्लाह, फिर कहानी समझ आती है, वरना बात समझ नहीं आती। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें ये तड़प लगा दे, फिक्र लगा दे, गम लगा दे कि अल्लाह तू हमारी नस्लों को संवार, हम तुझे भूल गए तू हमें ना भूलना, इस तरह का मामला ना हो जाए कि हम तुझसे दूर औलादे छोड़ दे। बिल्कुल मेरा तो इस वक्त दिल खाली होता है, पता नहीं क्यों ऐसे मुझे लगता है कि जैसे दिल नहीं उड़ता, और अल्लाह जानता है कि ये बातें सिर्फ जुबान से नहीं निकल सकती। आप इन जुमलों को लिख के बोलना चाहें, लेकिन अगर आपके अंदर वो दर्द नहीं होगा ना, तो इसके अंदर तासीर नहीं आएगी। इसलिए सोचें कुछ। कुछ करें अपने लिए और अपनी नस्लों के लिए करें। इनको अल्लाह से जोड़ने का तरीका, इनको अल्लाह के दीन से जोड़ना है, इनसे नेकियों के काम कराएं, फिर आप देखेंगे फायदा होगा। तिलका उम्मतुन कद खलत, वो एक जमात थी जो गुजर गई। यहां से यहूद के दूसरे शोशे की तरफ इशारा है। एक तो कहते थे कि याकूब अलैहिस्सलाम ने मरते वक्त यहूदी बनने की दावत दी, और दूसरा क्या करते थे कि नबियों की सारी नेकियां अपने खाते में डालना चाहते थे। कोई काम खुद करे ना करे, कहते थे इब्राहिम की नेकियां हमारे काम आ जाएंगी, इसहाक की नेकियां हमारे काम आ जाएंगी, याकूब की नेकियां काम आ जाएंगी। अल्लाह ताला कहते हैं ये नेकियां को टीम वर्क नहीं है। तिल का उम्मत उन कद खलत, ये एक उम्मत थी गुजर गई, दैट्स इट, खत्म। जो उन्होंने किया वो उनके लिए था, अब तुम उनके साथ फखर करते हुए उनके नाम के साथ अपने नाम जोड़ के सिर्फ निस्बत से फायदा उठाओगे तो झूठ है। क्यों? लहा मा कसबत, उनके लिए था जो उन्होंने कमाया, व्हाट दे हैड अर्न, उनको मिल गया उसका नतीजा। वलकुम मा कसबतुम, और तुम्हारे लिए वो है जो तुम कमाओगे। हाँ, वला तुसलूना अम्मा कानू यामलून, तुम नहीं पूछे जाओगे उनके बारे में जो उन्होंने अमल किए थे। उनका काम उनका था, तुम्हारा काम तुम्हारा है। क्या पता चला कि बाज लोग वो नेमत या वो ऑनर जो पिछले लोगों को मेहनत की वजह से मिली होती है, बाद में आने वाले उसको सिर्फ निस्बत की बुनियाद पे लेना चाहते हैं। मिसाल देती हूँ, जैसे एक शख्स है, सारी जिंदगी उसने हलाल के साथ कमाया और खूब मेहनत की और एक बहुत बड़ा नाम बना लिया सोसाइटी में, मोनोपोली होगी उसके नाम की। अब क्या हुआ, ऐसा ऐसा वो कमजोर हुआ तो बेटे सामने आ गए, बेटों को वो सब चीजें बनी बनाई मिली, बाप का नाम भी चलता है और साख भी बहुत है, दौलत भी बहुत है। बाप का इंतकाल हो गया, अब क्या होगा? बेटे क्या सोचेंगे कि सिर्फ बाप के नाम पे जो इज्जत बनी है हमारी कंपनी के, उसकी बुनियाद पे हमारा कारोबार चलता रहेगा? चलता है? अगर वो मेहनत ना करें और उस रूल्स को फॉलो ना करें और वो क्वालिटी ना रखेंगे तो कुछ सालों में क्या होगा? फ्लॉप, बैंक्रप्सी। ये यहां बताया जा रहा है कि नबियों की नेकियों पे मान करने की बजाय अपना फिक्र करो, बातों से कुछ नहीं होता, जो काम करेगा उसको कुछ मिलेगा। लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम। देखिए कि जब कोई टीम किसी जगह खेल रही होती है ना, इमेजिनेशन में लाएं क्रिकेट, 10-12 खिलाड़ी एक टीम के हैं, सिर्फ एक खिलाड़ी एंड पे छक्का लगाता है और मैच जीत गई पूरी टीम। फतह किसकी होती है? टीम की। नाम किसका बुलंद होता है? मुल्क का। ऐसे ही है ना, एक के छक्के ने बाकी 11 को भी इज्जत दे दी। दीन में ऐसा नहीं होता, नेकियों में टीम वर्क नहीं है कि सिर्फ एक ने छक्का लगा दिया तो बाकी सारे उस छक्के में जन्नत के आला दर्जों पे पहुंच जाएंगे। लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, बाप की नेकियां बेटे को और बेटे की बाप को नहीं आएंगी। एक खास हद तक अल्लाह रास्ता दिखा देता है दूसरों की बुनियाद पे, लेकिन अमल अपना ही करना पड़ेगा। और अगर आप ऑपोजिट हो, आप जाके दुश्मन की टीम से खेलने लग जाएं, तो क्या आपको ऑनर मिलेगी? आज हमारा हाल क्या कि हम शैतान की बातें मान के दुश्मन के तरीकों पे चल रहे होते हैं और फखर क्या करते हैं कि उम्मते मोहम्मदी हैं जी, हम इस्माइल, हम सैयद हैं और हम हाशमी खानदान से हैं और हमें कौन पूछे, और हमारी तो पुश्ती पाक है। तो अल्लाह ताला ने खोल दी आंखें कि सब पीछे होगा। अब देखिए इस आयत को आपने पढ़ा और आपको लगा ना कि इसमें कितना एक पुरसोस किस्म का मैसेज है। कुछ लोग इंतहाई बदतरीन किस्म की तावील करते हैं। वो कहते हैं देखो, इस्लाम औरतों के कमाने को जायज करता है और हुक्म देता है, जिसको आप कहते हैं ना कि एक होता है 1% कमाए और सारे खाएं, और एक होता है कि 2 लोग कमाएं और खाएं। तो कहते हैं देखो, लहा माँ का सबत वाले को माँ का सब, तुम जो मर्द कमाता है वो मर्द के लिए, जो औरत कमाती है उसके लिए। कितनी बुरी तावील है। यानी ऐसे ऐसे रेफरेंसेस आपको सुनाए जाते हैं जब कभी आप ऐसे लोगों की स्पीचेस सुनते हैं और स्क्रीनों पे आके बोलते हैं ना, लोग कहते हैं वाह वाह वाह, ये तो बात कुरान में लिखी हुई है, आगे भी आएगी ये बात इशारा तो इसी सबक में। तो ये तावील होती है, कि जी मर्द भी कमाए औरत भी कमाए। कसब का लफ्ज अमूमन 98% कुरान पाक में आखरत की कमाई के लिए आता है और दुनिया के लिए फजल का लफ्ज आता है। जैसे मस्जिद से निकलते हुए कहते हैं कि अल्लाह मैं तुझसे तेरा फजल मांगती हूँ, तो यहाँ आखरत की बात है। तुमसे नहीं पूछा जाएगा कौन क्या कर गया, वो अच्छे थे बुरे। यहाँ से एक और बात पता चलती है कि नबियों की औलादों को तो बताया जा रहा है कि वो जो कर चुके उनको मिल गया, तुमसे नहीं पूछा जाएगा। वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, इसमें एक सवाल है। हमारे बड़ों में कोई बुरा काम करता था, गलत करता था, कोई बिदत थी, शिर्क था, तो अल्लाह कहता है तुमसे नहीं पूछा जाएगा अगर तुम इल्म लाने के बाद अच्छे काम शुरू कर दो और उनके लिए दुआ करो। हो सकता है वो भोले भाले थे, सीधे थे, उन तक वो इल्म नहीं पहुंचा जो तुम्हारे पास पहुंच गया, तो लिहाजा पता क्या चल गया कि तुम्हें पता चल गया, मान जाओ। देखिए दो लफ्ज है, एक है हिदायत और एक है जलालत, गुमराही। हिदायत क्या कि हक बात मालूम हो गई और आपने उस पर अमल शुरू कर दिया, पता चल गया इस बारे में क्या कुछ है। जलालत क्या होती है कि हक बात मालूम नहीं हुई तो अमल भी नहीं किया, भटके हुए थे ना। और इससे बढ़ के क्या कि हक बात मालूम हो जाए, ना हक बात मालूम हुई ना अमल किया। तो हर बंदे का मामला अल्लाह के पास इंडिविजुअल बेसिस पे जाएगा, इसलिए मुझे और आपको सबसे ज्यादा फिक्र अपनी करनी है। अंबिया कराम की इस वसीयत से पता चलता है कि सारी जिंदगी जिस मकसद के हसूल में लगा दी, आखिरी वक्त में उन्होंने औलाद को उसी की फिक्र लगाई। उनको माल और दौलत के और कोठियों कारों के सुपुर्द नहीं किया, उन्होंने औलाद की रूहानी तरबियत की, इखलाकी तरबियत की। उनको वो दौलत दी कि जो कभी डॉलर के और पाउंड के रेट से कमती बढ़ती नहीं है, कि अब इकोनॉमिक फ्लॉप हो गया तो सारी जायदादें डूब गई और ये बढ़ गई तो ये हो गई। उन्होंने एक ऐसा नुस्खा अपनी औलादों को दे दिया कि वक्त के उतार चढ़ाव से उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ से ये भी पता चलता है कि वो माँ बाप जो दिन रात एक करके अपने बच्चों के लिए माल और दौलत के अंबार जमा कर लेते हैं, लेकिन रूहानी तरबियत से गाफिल रहते हैं, वो औलाद पे कोई एहसान नहीं कर रहे बल्कि उन पे जुल्म कर रहे हैं। उसी का आधा वक्त बच्चों के साथ बैठ के उनकी तरबियत और अपनी तालीम दोनों के लिए लगाया जाए तो शायद ज्यादा बड़ी बात होगी। इमाम अहमद का नाम आप सबने सुना होगा, मौत की बेहोशियों में थे और जब ऐसे बेहोशी में गए ना तो कहते हैं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, फिर डूब जाते हैं गमरातिल मौत में। खैर दोबारा तबीयत संभली तो उनके बच्चों ने कहा कि अब्बा ये आप अभी क्या बातें कर रहे थे, किससे बातें कर रहे थे? तो कहने लगे कि मेरे पास शैतान आया था और कहने लगा कि ऐ इमाम अहमद तू मेरे हाथ से निकल गया, सारी जिंदगी मैंने तुझे कितना कोशिश किया बहकाने की लेकिन अब तू मेरे हाथ से निकल गया। तो मैं उसको कह रहा था अभी नहीं अभी नहीं, क्यों? कि अभी मैं जिंदा हूं, जब तक कि मैं दुनिया से सलामत चला ना जाऊं, आखिरी वक्त तक शैतान हमारे पीछे आता है। मौत की बेहोशियों में कहते हैं कि पानी ले आता है, ये पानी देता हूं, ये मैंने हदीस में नहीं पढ़ा कहीं लेकिन मारूफ बात है, ये तो मिलता है कि मौत में शैतान बहकाता है, लेकिन कहते हैं कि उस वक्त अपने सजदे की बुनियाद पे बंदे से क्या कुछ काम कराता है, मुझे सजदा कर लो मैं मानूंगा। सूरत हशर में आप पढ़ेंगे इस पे, शैतान आता है इंसान के, कहता है कुफर कर, और जब कुफर बंदा करता है तो फिर कहता है मैं बरी हूँ तुमसे। तो इसलिए बहुत ज्यादा शौर की जरूरत है, हमारी जिंदगी बहुत कीमती है, एक एक दिन कीमती है, एक एक ईंट है। आज का दिन अगर आज की ईंट टेढ़ी लगी ना तो अगला दिन कभी सीधा नहीं होगा, आज सुबह अच्छी नहीं है तो शाम अच्छी कभी नहीं होगी। ये नहीं हो सकता सारी जिंदगी जो चाहो करो और मौत के फरिश्ते को देकर कलमा पढ़ने लग जाए, इम्पॉसिबल। गालिबन इमाम दा इब्ने तैमिया कहते हैं कि ये जो मरते वक्त कलमा नसीब होता है ना, ये कहाँ से होता है? सारी जिंदगी बंदा मोमिन के दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है, तो मौत के फरिश्ते को देकर वहशत की वजह से वो बात जुबान पे आ जाती है। जैसे चोर को देखें तो एकदम लोग सच बोलने लगते हैं ना, चाबियां उधर रखी हैं, घर उधर है, वो ले लो मुझे छोड़ दो, तो मौत के वक्त झूठ नहीं बंदा बोलता, और जिसके दिल में मौत है ही नहीं था वो क्या करेगा। अब आप बताइए एक बंदा सारा दिन दौड़ लगी हुई है, दुनिया 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 दुनिया, इधर दुनिया उधर दुनिया उधर दुनिया इधर, एक लम्हे में मौत आ गई तो क्या उस वक्त वो दीन देखेगा? दीन तो हमारी कई लाश कोने में खुदरे में पड़ा हुआ है अभी भी आज भी। इसलिए अपने आप को छांटे, कितना मुखलिस हो रही हूँ, कितना हो रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ। और सच्चा रास्ता अल्लाह का रास्ता है। कुछ लोग जो काम खुद कर रहे होते हैं कहते हैं ये ठीक रास्ता है। नहीं, मेरा रास्ता नहीं, अल्लाह का रास्ता। और नबियों की कामयाबी की वजह ये बनी कि उन्होंने औलाद को रब से जोड़ा, इलाह का आबाई। अब ये बात उनकी नस्लों ने भुला दी। इतनी बात पे आगे नबी दुनिया से जाते जाते तो यही कह के गए। उनके जाहरी जो सामने बैठे थे, जिसको सुलभी बेटे कहेंगे, उन्होंने कह भी दिया अब्बा जी फिक्र ना करें, हम आपके इलाह की बात करेंगे। लेकिन वक्त के साथ क्या हुआ, अब ये दोनों आयतों 134 और 135 के बीच में ये जुमला लिख लें, लेकिन गुजरते वक्त के साथ क्या हुआ, नबियों की उन वसीयतों पे अमल छूटा और खुशफहमियां शुरू हो गई। जो बात माँ बाप ने सिखाई थी उसको भूल गए, जैसे कुछ मुसलमान भी आज अपने ही माँ बाप की कई खूबसूरत सिखाई हुई बातें भूले हुए, और फिरकों में बट गए। इलाह की इबादत करने की बजाय, एक अल्लाह का बनने की बजाय किस चीज़ पे आ गए, असल दीन को छोड़ा। यहाँ से आपको आज उम्मत मुस्लिमा की जो गुमराही है उसकी वजह एक और तरह से आज समझ आ जाएगी कि अल्लाह की जात जब तक बीच में रहती है ना मुसलमानों के, वो एक जुड़े रहते हैं, बिल्कुल तस्बीह की डोरी की तरह। डोरी बीच में है तो 100 तरह के मोती डाले, वो एक ही डोरी के बीच में घूमेंगे। छोटे मोती, बड़े मोती, पीले नीले रंग बिरंगे मोती चलते जाएंगे, लेकिन जब वो डोरी कटती है ना तो एक ही तरह के मोती क्यों ना हो, ऐसे बिखरेंगे कि इस कमरे में कहीं आपको नजर भी नहीं आएंगे। यही उम्मतों के साथ हुआ, कल के यहूद के साथ, आज के मुसलमानों के साथ। जब नबी दुनिया से जाते हैं तो वो उम्मत को ऐसी ही वसीयतें करते हैं। और यहाँ आपको अगर इशारतन हल्का सा एक होमवर्क दे दूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी मैसेज भी सुने, हज्जे खुतबतुल विदा, जिसके फिर थोड़े ही अरसे के बाद आपका इंतकाल हुआ। अस्सलातु वमा मलकत अईमानुकुम, अस्सलातु वमा मलकत अईमानुकुम, नमाज नमाज नमाज, और अपने मातहत इनकी केयर करो। और हज्जतुल विदा ना, उसके कई डिफरेंट एडिशन हमें मिलते हैं हदीस की किताबों में, आप पढ़ के देखे, बिल्कुल पूरी इस्लामी शरीयत का खुलासा है। अल्लाह के नबी ने भी ये वसीयतें की थी, ला इलाहा इल्लल्लाह से लेके इंसानी हकूक और मामलात तक, मुसलमान उस पर ही रहे। खैरुल कुरून करनी, सहाबा का दौर, उसके बाद ताबईन का दौर, चलते रहे नबियों के साथ। यहां भी यही मामला हो रहा है। जब ये सब हो गया ना, लेकिन बाद में आने वालों ने इन बातों को याद रखने की बजाय सिर्फ उन निस्बतों पे फख्र किया, नतीजा क्या हुआ कि उनकी उम्मत फिरकों में बट गई। फिरका बनता ही तब है जब फर्क होता है, ऐसे ही है ना, फर्क से है ना फिरका। अल्लाह के साथ सब जुड़े रहेंगे तो सब एक बनेंगे, और जब अल्लाह के तरीकों से, नबी के तरीकों से हटेंगे, चाहे दीन के नाम पे हटेंगे, तो फिरकाबाजी हो गई। और जब फिरकाबाजी होती है ना, तो कामयाबी की बुनियाद अल्लाह और उसका दीन नहीं होता, बल्कि क्या है, अब इस आयत को सुनिए, आयत 135, वकालू, और उन्होंने कहा, किसने कहा, यहूद ने कहा और नसारा ने कहा, और आज के मुसलमान कहते हैं क्या, कूनू हूदन, यहूदी बन जाओ। और नसारा, नसारा ने क्या क्या, नहीं, नसारा बनो, क्रिश्चियन बनो, क्या होगा, दोनों का दावा कहता, तहतदू, तुम हिदायत पा जाओगे। यहूद ने हिदायत का मेयार रखा कि खुद को यहूदी कहलाओ, नसारा ने हिदायत पे होने का मेयार रखा कि खुद को नसारा कहो, फिरका वाराना नाम दे दिए। सिर्फ नामों की निस्बत पे खुद को जन्नत में जाने के काबिल कहा, हो जाओ हिदायत पे आ जाओगे। नाम थे ये दोनों खुद साख्ता, बहुत दफा बता चुकी हूँ पीछे, अल्लाह ने नाम नहीं दिए। नाम क्या दिया था अल्लाह ने, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, सूरत हज। इन्होंने कहा यहूदी बनो, नसरानी बनो, ये करो वो करो, होगा क्या हिदायत पाओगे। आज मुसलमान भी ऐसे नहीं कहते, अगर आज मुसलमानों के कुछ नाम देख ले यहूदियत और नसरानियत की तरह, तो आज का मुसलमान क्या आपको कुछ इस किस्म की बातें करता नहीं दिखता, कूनो ब्रेलवी तहतदू, कूनो देवबंदी तहतदू, कूनो मसलकों के फिरकों के नाम लिखते जाइए, कि आज मुसलमान कुछ इस तरह की बातें नहीं करते। हर गिरोह कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरहून, हर गिरोह उस पे खुश है जिस पे वो है। हिदायत का मेयार अपने फिरके और अपनी जमात से जुड़ना बना दिया। अच्छा पहले तो था ना फिरका, फिरका बड़ा होता है, जैसे मुख्तलिफ फिरके हैं ना, या जैसे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, हनफी, मालिकी, शाफी, अहमद, जो भी नाम है ना, ये बिग लेवल है। कल तक तो चले ये था ना आइमाए कराम के नाम पे, अब दिन ब दिन फिरकों से भी ज्यादा चीज छोटी जमात। जमात क्या होती है? जमा से चंद लोग जमा होते हैं ग्रुप, जैसे आज हम जमा हुए हैं पढ़ने के लिए, जमा हुए ना, ये इस वक्त हमारा एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हुआ क्या कि जमातों के नाम कह के कह दिए, कूनू फला नाम के साथ तहतदू, हमारी जमात में आ जाओ तो हिदायत पाओगे, हमारे नाम का स्लोगन यूज कर लोगे तो हिदायत पाओगे, और दिस एंड दैट, और वो बात बड़ी से होते होते छोटे छोटे टुकड़े हो गए। जैसे आपके पास एक रस्सी हो ना, कोई आपको कि इसको काटो, तो शुरू में कोई काटेगा ना उसके चार बड़े बड़े टुकड़े कर देगा। और आप देखिए कुछ लोगों को आदत होती है हाथ में कैंची लेके ना बैठते बातें करते तो कुछ ना कुछ काटते ही रहते हैं। अब वो चार टुकड़ों को भी जब आप पकड़ के खेलेंगे ना तो आप चूरा चूरा कर देंगे। मुसलमानों का आज ये हाल है, वहदानियत, इज्तमाई काम पीछे और नाम अलग। ग्रुप बनने, नाम होने कोई बुरी बात नहीं है, जाहिर किसी नाम से ही कोई काम करेंगे, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन जब उसी के अंदर हिदायत है और उसके दरवाजे के बाहर हिदायत खत्म हो गई, तो यही है वो सोच जिसको इधर का तहतदू, यानी हिदायत का सोर्स सिर्फ हमारा नाम है, काम नहीं, नाम। हिदायत पा जाओगे, अल्लाह कहते गलत। अब इन दोनों जुमलों के बीच में लिख ले, नो नॉट, अल्लाह इज जस्ट लाइक डिनाइंग। तुम्हारा ये कहना कि मेरे नाम के साथ अपना नाम जोड़ लोगे तो बच जाओगे, बल्कि कुल, ए नबी, अब आप इनको इखलाक सिखाइए, बल मिल्लत इब्राहिम हनीफा, बल्कि इब्राहिम का तरीका। ये किसकी तरफ आया इशारा, जरा आयत के साथ देख के बता सकते हैं? तहतदू के साथ है। हिदायत पाने का मेयार क्या? बल मिल्लत इब्राहिम हनीफा। और आज के सबक का पहला लफ्ज ही देख ले, वमा यरगबु अन मिल्लत इब्राहिम, एक ही सबक आ रहा है ना बार बार, मिल्लत इब्राहिमी, रब्बानियत, रब वाले बन जाओ, नफ्स के बंदे नहीं रब के बनो। कौन सा इब्राहिम? हनीफन, जो हनीफ थे, फोकस्ड, सबसे कटके रब का होने वाला। इसका ऑपोजिट अरबी में जनीफ होता है, जनफा से माइल होने वाला, इधर से उधर झुकने वाला। और वमा कान मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिकों में से ना था। गोया के बता दिया कि यहूदियत और ईसाइयत दोनों बाद की पैदावार है। यहूदियत अपना ये जो नाम है ना आज यहूदियत का, अपने नाम और अपने मजहबी खसूसियात से जो आज हमें दिखते हैं ना, ये तीसरी चौथी सदी कबल मसीह में पैदा हुई। लिख ले, आज जो मजहब यहूदियत के नाम को आपको मिलता है ना, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से तकरीबन 300-400 साल पहले ईजाद हुआ। अगर आप उससे ऊपर जाए ना, तो लफ्ज यहूदियत के नाम पे कोई मजहब नहीं था, कोई फिरका नहीं था, ठीक है? और ईसाइयत, जिसको आज के दौर में आप ईसाई या ईसाइयत कहते हैं ना, तो ये जो है ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में नहीं थी। हैरत हो रही है? लफ्ज ईसाई, ईसाइयत, क्रिश्चियनिटी हजरत ईसा की जिंदगी के बाद शुरू हुआ। लंबा अरसा गुजरा, वो भी एक हिस्ट्री, आप सूरह आल इमरान में कुछ उस पर पढ़ लेंगे काफी चीजें। जो नाम उस दौर में मौजूद ही नहीं थे, उनकी नसीहत कैसे कर सकते हैं नबी दुनिया से जाते हुए? समझ आई बात? ये कह रहे हैं कि वो कह के गए थे कि तुम यहूदी हो के मरना, हजरत याकूब। तो हजरत याकूब की जिंदगी में तो यहूदियत नाम का कोई मजहब ही नहीं था। अल्लाह ने इनको कहा या अहले किताब का, ये बिल्कुल ऐसी बात है अगर आप समझना चाहें कि जैसे कोई बच्चा ये कहे कि मैं अपने अम्मी अब्बू की शादी पे आया था, नामुमकिन है ना? बिल्कुल यही बात है। अल्लाह ताला कह रहे हैं जो नाम उस दौर में थे ही नहीं, तुम कैसे कह सकते हो कि नबियों ने इसकी बात कही थी? गलत है, फिर क्या सही है? तो कुलु आमन्ना बिल्लाह, कह दो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, वमा उन्जिला इलैना, और जो हमारी तरफ नाजिल हुआ। ये खिताब किससे है? मुसलमानों से है। तुम यहूदियों और नसरानियों की इस दावत के जवाब में कहो, नहीं थैंक यू वेरी मच आपकी ऑफर का, हमारा नबी आ गया, अब हम अल्लाह पर ईमान के बाद, वमा उन्जिला इलैना, यानी खातिमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे राजी हैं। जुबान से भी कहो, अमल से भी कहो, और ये कोई नया दीन नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बल्कि व मा अनज़िला इला इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक व याकूब व अलअस्बात, और जो नाजिल किया कि इब्राहिम की तरफ और इस्माइल और इसहाक याकूब और उनके औलाद की तरफ, मुराद क्या कि ये सब एक ही कड़ी की डिफरेंट चेन्स थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु उस गाड़ी का आखिरी डब्बा है जिसकी पहली बोगी हजरत आदम थे। ये सब एक ही ट्रैक पे चल रहे थे, पटरी एक ही थी। हम आखिरी बोगी में बैठे हैं, पहली बोगी आला और आखिरी बोगी एक ही जगह पहुंचती है ना, शर्त क्या है कि एक ही ट्रैक हो। ये सारा दीन है, लिहाजा इसी पे रहो। यहाँ जो लफ्ज है ना असबात, सिफ्त से पोते और नवासे के लिए आता है, फैलना, असबाता का लफ्ज आता है, बच्चे पोते नवासे बंदे की नस्ल को फैलाते हैं, इसकी तरफ इशारा है। यहाँ कोई रंग नस्ल कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक ही तरह के लोग। मजीद आगे बात बढ़ी, वमाउतिया मूसा व ईसा वमाउतिया नबीयून मिन रब्बिहिम, और जो दिया गया मूसा और ईसा को और जो अता व सब अम्बिया कराम को उनके रब की तरफ से, ला नुफर्रिकु बैना अहद मिनहुम, हम इनमें से किसी में कोई तफरीक नहीं पैदा करते। तफरीक से यहाँ क्या मुराद है, कि ये हक पे थे ये हक पे नहीं थे? नहीं, दो लफ्ज हैं, ये तीसरे बारे के शुरू में वाजे करूंगी, तफरीक बैनल अम्बिया और एक तफदील बैनल अम्बिया। तफरीक हराम है, कुफर है, कि एक नबी को माने दूसरे को नहीं माने, गलत है। तफदील हकीकत है, फजल है, एक को अल्लाह ने कुछ कहा, एक से कलाम किया, एक से बात की, एक को अल्लाह ने अपने हाथ से बगैर माँ बाप के पैदा कर दिया। हम किसी नबी को रिजेक्ट नहीं करते, असल में इसमें इशारा फिर यहूद मदीना को है कि तुम सारे नबियों को मानते रहो लेकिन मोहम्मद सल्लम को नहीं मानोगे तो तुम दीन पे नहीं हो। और ईसाइयों को भी कह दिया तुम सारे नबियों को मानो लेकिन मोहम्मद सल्लम को नहीं मानोगे तो तुम नी दीन पे नहीं हो। व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम उसके लिए फरमाबरदार हैं। हु क्या है? अल्लाह की जात, अल्लाह के आगे हम झुके हुए हैं, हम उस पे रहेंगे। आप कह लें कि जो हम पढ़ते हैं ना, ईमाने मुफस्सल ईमाने मजमल, जब सुने मैं बचपन से ही आमंतु बिल्लाही वक, तो ये असल में इस्लामी अकीदे की जुजियात है। खोल के बयान कर दिया कि बुनियादी असूल एक ही है कि अल्लाह की बड़ाई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना, ये है कामयाबी का। और यहां से ये भी पता चलता है कि फिरका बंदी सारी खत्म होगी तो इन्हीं दो नामों पे होगी, काल अल्लाह व काल रसूल, अल्लाह और उसके रसूल से जुड़ेंगे अपने आप को बगैर किसी फिरके के मसलक के। आज आप देखिए यहूदियत नसरानियत की हम बातें करते हैं तो वो कौन थे? तो आज लोग कहते हैं ना आपको अपना एक नाम रखना चाहिए, कोई तो फिरका हो। तो पूछिए अबू बकर का फिरका क्या था, उमर का फिरका क्या था? अगर आप कहेंगे मिसाल है कि अबू बकर जो थे वो हनफी थे, कह सकते हैं ना, जो लोग अपने आप को हनफी कहते हैं, तो क्या हजरत अबू बकर के दौर में हनफी मसलक शुरू हो चुका था? आपको पता है अगर आप मेरे हाथों को देखें, ये नबी सल्लम का दौर, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, यहाँ तक आ जाए, और यहाँ से पहले इमाम का दौर शुरू होता है, एक इमाम दूसरा, ये बीच में कई सौ साल बिल्कुल कोई मसलक नहीं था, ये कल की बातें हैं। आप अगर कहते हैं अबू बकर हनफी थे तो आप ऐसे ही कह रहे हैं जैसे अपने बाप की शादी में बच्चा आने की बात करें, वो मसलक थे ही नहीं जिनके नाम लेके आज हम उम्मत को तोड़ रहे हैं। ये जुल्म की हद है कि हम ऐसे काम करते हैं और फिर कहते हैं कि इस तरह की बातें हैं। इन सारी चीजों को अल्लाह ताला खत्म करने का एक ही तरीका बताते हैं कि तुम बल मिल्लत इब्राहिम, यही आज हमारा मसलक है, यही हमारी सोच है कि हम कुरान और सुन्नत को लेकर चलेंगे तो फिर बात बनेगी। ये नहीं कि सुन्नी बन जाओ तो हिदायत पाओगे, शिया बन जाओ, बरेलवी बन जाओ और फुला फुला बन जाओ बनाओ, ये चंद नाम है, आगे कहीं बात आएगी, सूरह आले इमरान में बहुत बात आएगी इसके ऊपर, तो वहां जाके इनकी हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा थोड़ी थोड़ी। ये कोई किसी शहर का नाम है, बरेली शहर है, देवबंद एक शहर है, कुछ शख्सियात के नाम है, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के नाम पे हनफी और इसरे इमाम मालिक के नाम पे मालिकी। आज लोग चोरियां करें, नमाजें ना पढ़ें, किसी को कोई फर्क नहीं, कपड़े दिन ब दिन छोटे से छोटे पहनते थे कोई फर्क नहीं, लेकिन जो ही कोई एक मसलक छोड़ के कुरान सुन्नत पे जाता है लोगों को फिक्र लग जाती है कि ये वहाबी हो गया और ये फलां हो गया, ये हो गया। आज हमारी कहाँ तसल्ली होती है खुद को मुसलमान कहकर, कुछ तो होगा, छुपा रहे हैं, नहीं कुछ तो होगा। आपसे भी लोग कहते होंगे आपके उस्ताद का मसलक क्या है, उसका नाम पूछ के क्या करते हैं, किसको, नहीं ये जो कुछ नहीं होता ना कहते हैं वो वहाबी होते हैं, नहीं ये कुछ तो होंगे। तो अपना नाम खूबसूरत रखें, किसी से जुड़ना, इज्जत सबकी करनी है। अब इसका ये नहीं मतलब कि आप जाके फतवे दे दें कि फलां भी काफिर फलां भी जहन्नमी, नेवर, किसी आलिम को, किसी दीनदार को कुछ नहीं कहना, इज्जत सबकी करें, सब दीनदारों से फायदा उठाएं, रिस्पेक्ट करें उनके, अच्छी बात जो सही समझ आपके मतलब की ले ले, लेकिन लोगों से नहीं जोड़ना, उलमा से नहीं जोड़ना, मसलकों से नहीं जोड़ना, बल्कि अल्लाह ताला से जोड़ना। आप देखिएगा थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन उम्मत जुड़ जाएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह न्यू मुस्लिम्स के जोन पे जो बात शुरू हुई है, या आज वेस्ट में जिस अंदाज से दीन की तबलीग हो रही है, उसमें अब इसकी काफी असर शुरू हो गए। हमारे इलाके जो अपने मुल्कों के जो अरब से करीब थे, पाकिस्तान इंडिया, वहां से फिरका वारियत यूं पनपी है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, छोटी सी चार लफ्ज पढ़ के अपनी जमात बना ली। अब बाहर वाले लोग जब खुले जहन के साथ इस चीज पे आ रहे हैं, क्योंकि जब मुस्लिम कोई होता है तो उसको कुरान और सुन्नत की अब दावत देते हैं ना, और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये शो दिन ब दिन आम हो रहा है कि कुरान पढ़ना है, कुरान पढ़ते हुए आपकी सोच बन रही है। मैं ये बातें आपको जुबानी कहती तो आपको समझ ही नहीं आनी थी। सूरत अलनाम आयत 159 को भी नोट कर ले, इसका तर्जुमा आप जाके खुद लिखिएगा कि इन्नल्लज़ीना फर्रकु दीनहुम वकानु शियान, जिन लोगों ने अपने दीन को फिरकों में बांट लिया और कई फिरकों में बट गए, लस्त मिनहुम, आपका उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं, इनका मामला अल्लाह के सपुर्द है कि वो किन कामों में मसरूफ हैं, तो अल्लाह ताला में हिदायत दे।